अध्याय सात, कल्पना के कानन की रानी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतवासियों को पूर्ण रूप से राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता भले ही न प्राप्त हुई हो, परंतु मानसिक स्वाधीनता अवश्य प्राप्त हुई है, और कविता के लिए इस मानसिक स्वाधीनता का महत्व बहुत बड़ा है। मानसिक स्वाधीनता विचारों और भावों के अबाध प्रसार के द्वार खोल देती है, और छायावादी कवि के लिए इस मानसिक स्वाधीनता ने यही कार्य किया। नई पीढ़ी के युवकों का हृदय पुरानी मर्यादाओं से मुक्त हुआ, परिपाटियों और सामाजिक विधि निषेधों से छुट्टी मिली, औचित्य अनौचित्य की नियमावली शिथिल हुई। इतना होना था कि हृदय से भावों का निर्झर फूट पड़ा, प्राणों से उच्छ्वास और आँखों से आंसू उमड़ चले। इसी उच्छ्वास और आंसू से छायावाद का आरंभ हुआ, भावुकता कविता का पर्याय हो गई। उससे पहले के कवियों के हृदय का ऐसा आबाद आवेग नहीं मिलता। द्विवेदी युग के कवि अपने भावों के अभिव्यक्ति के विषय में बड़े सतर्क थे। रीतिकाल के कवियों के लिए तो जैसे हृदय का कोई महत्व ही न था। उनकी सभी बातें इस कदर सांचे में ढली ढलाई निकलती प्रतीत होती हैं कि उनसे व्यक्ति वैशिष्ट का बोध ही नहीं होता। और संत भक्त कवियों के संयम का क्या कहना। अपने भगवान के सामने हृदय खोल कर रखते हुए भी भक्त संयत रहता था। भक्ति भावना ने भक्त कवि के चित्त को सदैव संतुलित रखा। वहाँ गलदस्य भावुकता की झलक भी कहीं कहीं मिल जाती है, परंतु उसमें भी एक प्रकार की मर्यादा है। भक्तों के यहाँ चित्त की अस्थिरता में भी स्थिरता है, विवलता में भी धैर्य है, आवेग में भी विवेक है, आत्मदुर्बलता में भी दृढ़ता है और संदेह में भी विश्वास है। परंतु यही बातें छायावादी कवियों के विषय में नहीं कही जा सकती। छायावादी कवि अपने भावावेग में धीरज, विवेक और विश्वास को किस प्रकार भूल जाता है, इसे पंत के उच्छ्वास, आंसू और ग्रंथि में अच्छी तरह देखा जा सकता है। जितनी विह्वलता छायावादी कवि की व्यथा में है, उतनी ही विह्वलता उसके उल्लास में भी है। इंद्रधनुष को लेकर देखकर वह बच्चों की तरह उछल पड़ता है, जैसे उसमें एकदम नई चीज देख ली है। वह अपने दुख और सुख की अनुभूति को थोड़ी देरी के लिए भी रोकने में असमर्थ है। बिना किसी सोच विचार और भय संकोच के छायावादी कवि अपने हर्ष शोक को ज्यों का त्यों प्रकट कर देता है। इस भावावेश से छायावादी कवि में कुछ गंभीरता की कमी भले ही आ गई हो, परंतु इसने जीवन और जगत को समझने की एक बड़ी शक्ति दे दी है, और यह शक्ति है संवेदनशीलता। अक्सर ऐसा होता है कि विचारों में जहां हम नहीं पहुंच पाते, भावों से पहुंच जाते हैं। इंद्रिय बोध ज्ञान का पहला सोपान है। किसी वस्तु का ज्ञान हमें सबसे पहले इंद्रिय बोध से ही होता है। इसे सामान्य व्यवहार की भाषा में हम अनुभव करते हैं। अनुभव की अवस्था में बोध्य वस्तु हमारे भावों का ही विषय होती है। जब एक ही प्रकार के इंद्रिय बोध जगाने वाली अनेक वस्तुएँ हमारे अनुभव में आती जाती हैं, तो हम उन विशिष्ट अनुभवों के आधार पर एक सामान्य मत बनाते हैं, और वही विचार होता है। तात्पर्य यह है कि भावावेग की वह पहली मनस्थिति है जिससे पहले किसी वस्तु का ज्ञान होता है, और छायावाद में इसकी प्रधानता थी। इसीलिए जगत और जीवन को समझने के लिए छायावादी कवियों को विशेष प्रकार की अंतर्दृष्टि मिल गई। छायावादी कवि प्रकृति और संसार के रहस्यों के विषय में जो इतने अधिक जिज्ञासु दिखाई पड़ते हैं, वह इसी अंतर्दृष्टि का प्रमाण है। हर चीज के प्रति अथक जिज्ञासा और कुतूहल छायावाद का मंगलाचरण है, और यही वह रचनात्मक शक्ति है जिसके द्वारा कवि, दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में कोई नई चीज दे बन जाता है। छायावाद में इस नई शक्ति का उन्मेष था, इसलिए उसने हिंदी साहित्य को कुछ नया दिया। द्विवेदी युग में अथवा रीतिकाल में इसकी कमी थी, इसलिए इन युगों के रचनात्मक दिन बहुत कम है। दबे हुए मन में जिज्ञासा का उदय असंभव है। रीतिकाल के कवियों के मन पर परिपाटियों का चिर संचित भार था, इसलिए उनमें जीवन और जगत के रहस्यों के प्रति कोई कुतूहल ही न था। इसके विपरीत छायावादी कवियों का मन उन्मुक्त था, इसलिए उनका मन हर दिशा में दौड़ लगाने के लिए तैयार रहता था। इस स्वच्छंद जिज्ञासा की ही बदौलत छायावादी कवियों ने प्रकृति और नारी सौंदर्य के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया। जिज्ञासा अपने आप में किसी वस्तु को जानने में समर्थ नहीं है, केवल प्रश्न से ही उत्तर नहीं मिल जाता। जिज्ञासा की तीव्रता जिज्ञासु के मन में एक दूसरी शक्ति को जन्म देती है, जिसके द्वारा मन उस वस्तु के अंतस्थल में प्रवेश करता है। उस शक्ति का नाम है कल्पना। कल्पना शक्ति के द्वारा मन अगम वस्तु तक पहुंच जाता है, दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त कर लेता है, अज्ञात और अज्ञेय वस्तु को भी जान लेता है तथा अदृश्य वस्तु का भी रूप निर्धारित कर सकने में समर्थ हो जाता है। जिज्ञासा ने छावादी कवि को यही कल्पना शक्ति प्रदान की। इस प्रकार भावावेग ने अंततोगत्वा कल्पना का सृजन किया। छायावाद की विशेषता बतलाते समय आलोचक अक्सर भावुकता और कल्पना का उल्लेख अलग अलग दो शक्तियों के रूप में करते हैं, परंतु विचार करने पर दोनों का कारण कार्य संबंध पुष्ट हो जाएगा। भाव और कल्पना अलग अलग तो हर युग में और हर काव्य में किसी न किसी मात्रा में मिल जाएगी, लेकिन छायावाद में जिस कल्पना के दर्शन होते हैं वह प्रस्तुत विधायनी सामान्य कल्पना नहीं है। छायावादी कल्पना केवल अलंकारों और प्रतीकों की योजना कराने वाली सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, वह सत्यान्वेषी अंतर्दृष्टि है और ऐसी कल्पना का विदय भावावेग में ही होता है। तीव्र भावावेग में ही उदात्त कल्पना का जन्म होता है। किसी वस्तु को देखते ही मन में उससे मिलते जुलते चित्रों का जो तांता बच जाता है वह तीव्र भावावेग के ही कारण। किसी वस्तु के सौंदर्य से उद्बुद्ध होकर मन की गति इतनी तीव्र हो जाती है कि वह अनेक तद्रूप वस्तुओं तक क्षण में पहुंच जाता है। भावावेग जितना भी तीव्र होता है अप्रस्तुत चीजों का रूप उतना ही अद्भुत और असामान्य होता है, और फिर ये अद्भुत तथा असामान्य चित्र हृदय में नए ढंग का आह्लाद और कंपन उत्पन्न करते हैं। संवेदना कल्पना को जागृत करती है और कल्पना संवेदना में वृद्धि करती है। इस तरह दोनों शक्तियों को अलगाना तथा अलगाकर इन पर विचार करना कठिन है। एक ही कविता में अनुभूति की तीव्रता और कल्पना की उड़ान दोनों साथ साथ मिल सकती है। उदाहरण के लिए राम की शक्ति पूजा में राम के हृदय की तीव्र व्यथा और फिर उस व्यथा के कारण लता अंतराल मिलन की शुद्धि और सामने के शैल श्रृंग में नूतन शक्ति की प्रतिमा का दर्शन सब साथ साथ होता है। उच्छ्वास में पंत का हृदय धीरज छोड़कर रोता भी है और शैल की शुद्धि भी लिख करता है। कामायनी में मनु एक ओर चिंता में डूबे हुए भी हैं और दूसरी ओर उनकी कल्पना में ध्वस्त देव सृष्टि के मोहक चित्र भी उभरते जाते हैं। इसलिए छायावाद में कल्पना को इतना महत्व दिया गया है। कल्पना का जितना गुणगान छायावाद में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ था। संभवतः कविता के क्षेत्र में छायावाद से पहले कल्पना का प्रचार भी नहीं हुआ था। छायावाद युग में कल्पना और कविता पर्याय हो गए। पंत अपने पल्लव को कल्पना के ये विह्वल बाल कहते हैं। निराला तो कविता मात्र को कल्पना के कानन की रानी मानते हैं। प्रसाद आरंभिक रचना काल में ही कल्पना की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे कल्पना सुखदान, तुम मनुष्य जीवन प्राण, तुम विशद व्योम समान। छायावादी कवियों को कल्पना इतनी अधिक प्रिय थी कि उन्होंने सबसे अधिक सुंदर उदात्त भव्य और महान वस्तुओं की उपमा कल्पना से दी। प्रसाद हिमालय को विश्व कल्पना कहते हैं, पंत बादल को त्रिभुवन की कल्पना महान मानते हैं तथा छाया को भी कवियों के गूढ़ कल्पना से कहते हैं। मध्ययुग में कविता में कल्पना केंद्र बिंदु न थी। कल्पना शक्ति का उपयोग निस्संदेह मध्ययुग के संत भक्त और रीतिवादी कवि भी करते थे, परंतु अधिक से अधिक इसके द्वारा वे थोड़ी सी उपमाओं और रूपकों का संग्रह करते थे। वे उपमाओं के मोह में इतने दूर तक नहीं बह जाते थे कि मूल भाव छूट जाए। उनकी कल्पना सृष्टि सदैव भावों से अनुशासित नियंत्रित और मर्यादित रहती है, इसलिए वे लोग कविता में रस की प्रधानता मानते थे। स्वयं उस रस की स्थिति क्या थी यह दूसरा सवाल है। उन कवियों का औपम्य विधान और सदैव लोगों के सामान्य अनुभव की पहुंच में होता था। छायावादी कवियों की भांति उनके औपम्य विधान में निजी तरंग की अतिशय भाग नहीं होती थी। उनकी उपमाएं उपमान की सीमा से आगे बढ़कर किसी दूसरी दुनिया की झांकी नहीं दिखाती थी। उनका प्रस्तुत जगत सदैव प्रस्तुत की सीमा में ही रहता था। कल्पना शक्ति के द्वारा वे वर्ण की व्याख्या मात्र करते थे, वे किसी नए वर्ण विषय की सृष्टि नहीं करते थे। दूसरे शब्दों में वे केवल व्याख्याता थे, छायावादी कवियों की तरह सृष्टा नहीं थे। मध्ययुग के कवि पूर्व परिचित वस्तुओं को कल्पना शक्ति के द्वारा अधिक से अधिक थोड़ा सा अलंकृत करके आकर्षक बना सकते थे। उन वस्तुओं में वे किसी सर्वथा अपरिचित तथा अदृश्य दृश्य की झांकी दिखाने में असमर्थ थे। मध्ययुग और आधुनिक शाहवादी कविता की कल्पना में यही मौलिक अंतर है। काव्य में रसात्मक बोध के विविध रूप शीर्षक निबंध में कल्पना के विषय में लिखते हुए आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया है कि आजकल तो भाव की बात दबसी गई है, केवल इसी का नाम लिया जाता है, क्योंकि कवि की नूतन सृष्टि केवल इसी की कृति समझी जाती है। मध्ययुगीन और छायावादी कल्पना में अंतर स्पष्ट करने के लिए बिहारी और निराला के यमुना संबंधी कविताओं की तुलना की जा सकती है। यमुना नदी को देखकर बिहारी कहते हैं, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन वह जात अजौ वह वा जमुना के तीर। जबकि निराला यमुना को देखते ही घोर स्वप्न में डूब जाते हैं और उनकी आंखों के सामने राधा कृष्ण और गोपियों की विविध किरणाओं के चित्र की लड़ी लग जाती है। निराला दिखाई पड़ने वाले सामान्य यमुना के ऊपर अतीत की यमुना को एकदम नए और मोहक रूप में पुनर्जीवित कर देते हैं। वस्तुतः निराला एक नई यमुना की सृष्टि कर डालते हैं, जिसका आरंभ इस प्रकार होता है। सपनों से उन किन आँखों की पल्लव छाया में अम्लान, यौवन की माया सा आया मोहन का सम्मोहन ध्यान। गंध लुब्ध किन अलिबालों के मुग्ध हृदय का मृदु गुंजार, तेरे दीर्घ कुसुमों के सुषमा जांच रहा है बारंबार। यमुना किनारे बिहारी को केवल तीन चीजें दिखाई पड़ी, सघन कुंज, सुखद छाया तथा शीतल सुरभित समीर, और ये तीनों ही चीजें प्रत्यक्ष हैं। इस प्रस्तुत दृश्य से उनके दृश्य हृदय में जिस अप्रस्तुत दृश्य की याद आती है, इसका वे संकेत भर करते रह जाते हैं। मध्ययुगीन कवि को इतना अवकाश नहीं है कि यहाँ थोड़े विस्तार में जाकर अप्रस्तुत दृश्य का वर्णन करें। अप्रस्तुत से इतना बंधा हुआ है कि कल्पना के अप्रस्तुत लोक पोड़ने की क्षमता ही नहीं है, हृदय अत्यंत मर्यादित है। इसके विपरीत निराला प्रस्तुत दृश्य की सर्वथा उपेक्षा करके अप्रस्तुत का ही कल्पना लोक रच देते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अप्रस्तुत योजना में निराला राधा कृष्ण की उन्हीं लीलाओं को याद करते हैं जिनका वर्णन भागवत, सुरसागर, रस पंचाध्याय आदि मध्ययुगीन काव्यों में हो चुका है। परंतु यदि निराला के संस्कृत लीला चित्रों की तुलना उन काव्यों के वर्णन से की जाए तो दो युगों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। निराला के चित्र भागवत, सुरसागर, रस पंचाध्याय आदि के चित्रों से अधिक कल्पना भ्रमण और मोहक हैं। इसी तरह यदि कालिदास के मेघदूत और पंत के बादल की तुलना की जाए तो छायावादी स्वच्छंद कल्पना की विशेषता स्पष्ट हो जाएगी। कालिदास ने वर्णन क्रम में बस कहीं कहीं मेघ के उपमानों और उत्प्रेक्षाओं से अलंकृत किया है, अन्यथा संपूर्ण काव्य में यथार्थ जगत का ही वर्णन है। पूर्व मेघ में मेघ का पद बतलाने के बहाने रास्ते में पड़ने वाले प्रांतों और नगरों का वर्णन किया गया है, और उत्तर मेघ में भी अधिकांशतः अलकापुरी, अलकापुरी के नरनारियों, यक्षप्रिया तथा प्रिया के विरह व्यथा का वर्णन है। इस तरह कालिदास के काव्य में कल्पना कम, वास्तविकता अधिक है। इसके विपरीत पंत के बादल में आदि से लेकर अंत तक बादल के विविध रूपों की कल्पना की गई है, फिर उन रूपों को मूर्त करने के लिए अद्भुत अद्भुत अप्रस्तुतों की योजना की गई है, जैसे बादल का यह कथन, बुद्बुद्युति तारक दल तरलित तम के जमुना जल में श्याम, हम विशाल जाम्बाल जाल से बहते हैं अमूल अविराम। दमयंती सिकमुद कला के रजत करों में फिर अविराम, स्वर्ण हंस से हम मृद ध्वनि कर कहते प्रिय संदेश ललाम। पंद के बादल में आद्योपांत इसी प्रकार कल्पना की ऊंची उड़ान है, और कल्पना के ये चित्र मन में अद्भुत ढंग का विस्मय और आह्लाद उत्पन्न करते हैं। कालिदास के मेघ की तरह ये किसी गहरी अनुभूति में हमें निसंदेह नहीं डुबाते, लेकिन इन चित्रों की विलक्षणता से मन में जो आह्लादपूर्ण कंपन महसूस होता है वह अपूर्व है। इससे एक अद्भुत और अपरिचित प्रदेश में मानस यात्रा करने की सुखद अनुभूति होती है। छायावाद में जो हृदय सत्ता का सुंदर सत्य व्यक्त हुआ है और प्रकृति तथा नारी सौंदर्य की जो सूक्ष्म रेखाएं चित्रित हुई हैं, उन सबका श्रेय इसी स्वच्छंद कल्पना को है। द्विवेदी युग के कवियों के लिए जो प्रकृति पेड़ पौधों पशु पक्षियों की सूची मात्र थी, उसी में छायावादी कवि की कल्पना प्रेरित अंतर्दृष्टि ने चेतन सौंदर्य की झलक देखी। द्विवेदी युग के कवियों के लिए जो जगत घटनाओं और तथ्यों का समुदाय था, उसमें छायावादी कवि की कल्पना प्रेरित अंतर्दृष्टि ने भावात्मक सत्य का अनुभव किया। जिन रूपों, वस्तुओं और घटनाओं के बाहरी रूप तक जाकर सामान्य लोगों की दृष्टि रुक जाती थी, छायावादी कवियों ने उनके भीतर जाकर देखने की शक्ति दी। छायावाद ने दृश्य को दर्शन बना दिया। साधारण लोग जिसे देखते हुए भी नहीं देखते थे, सुनते हुए भी नहीं सुनते थे, उसी को छायावाद ने उनके लिए सर्वांग उद्घाटित करके रख दिया। छायावादी कल्पना ने दैनिक जीवनचर्या से कुंठित मन को संवेदनशील बनाया। कल्पना के ही द्वारा छायावादी कवि ने इस दुखद वर्तमान में भी मनोहर स्वप्नलोक की सृष्टि की। छायावादी कवि कल्पना के पंखों पर चढ़कर कभी अतीत के स्वर्ण युग में घूम आता था, कभी क्षितिज के उस पार हो आता था और कभी भविष्य का भी आदर्श लोक देख लेता था। कल्पना ने छायावादी कवि को स्वप्नजीवी बना दिया। इसी शक्ति के द्वारा कवि ने शाश्वत सौंदर्य की सृष्टि की। इस नश्वर जगत पे भी अनश्वरता को प्राप्त करने की चेष्टा की। कवि के शब्दों में, तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के। कल्पना के द्वारा उसमें सार्वभौम भावना आई। अपनी काल्पनिक उड़ान में कवि ने अनुभव किया है कि वह संपूर्ण विश्व को अपनी बाहों में बांध सकता है, जैसे छोटा सा फूल अपनी सुरभि से संपूर्ण व्योम को बांध लेने का हौसला रखता है। उसी तरह छायावादी कवि ने भी अपनी कल्पना से अखिल चराचर को समेट लेने का सुख अनुभव किया। इसलिए छायावादी कवि के लिए कल्पना उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। कल्पना पर रोक लगाने का अर्थ था उसके व्यक्तित्व को बांधना। कल्पना की हंसी उड़ाने का अर्थ था स्वयं उसकी हंसी उड़ाना। कठोर वास्तविकता जब जब उस पर प्रहार करती, उसे सबसे पहले इसी बात का भय होता कि कहीं यह मेरे कल्पना पंखों को कतर न दे। ऐसे ही क्षणों में एक बार निराला ने लिखा था, विश्व सीमाहीन बाधती जाती मुझे कर कर व्यथा से दीन, कर रही हो दुख की विधि यह तुम्हें ला दी गई निधि, विहक के वे पंख बदले किया जल का मीन, मुक्त अंबर गया अब हो जलदी जीवन को। इसी छायावाद में दुख और विषाद का इतना गहरा रंग है। यदि छायावादी कभी इतना कल्पना प्रवण न होता तो उसे दुख की इतनी तीव्र अनुभूति भी न होती। छायावाद के क्षणों में कल्पना उसके लिए अभिशाप हो गई। व्यथा के क्षणों में कल्पना उसके लिए अभिशाप हो गई। उसने अपने अभावों को कल्पना के द्वारा बहुत बढ़ा कर देखा। यो भी कल्पना के रथ पर चढ़कर वह वस्तु स्थिति से बहुत आगे निकल गया था, लेकिन इस दौड़ में एक स्थिति ऐसी आ गई जब तनाव बढ़ गया, वास्तविकता पीछे खींचने लगी और आकांक्षा आगे। इस खींचतान में जैसा कि हमेशा होता है वास्तविकता प्रबल पड़ी, फलतः आकांक्षाएं टूटने लगी। छायावाद आंसुओं से गीला उठा, कहा भी है आशा ही परमम दुखम। इस खींचतान में एक ओर तमाम रूढ़ समर्थक शक्तियां और दूसरी ओर अकेले कवि का वैयक्तिक बल, पराजय अनिवार्य थी। बड़ी व्यथा के इस साथ छायावादी कविता की देवसेना ने स्वीकार किया, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल से उससे हारी होड़ लगाई, आह वेदना मिली विदाई।